Om Namah Bhagavate Vasudevaya. So today, if I'm not mistaken, if this piece of paper is correct, we're doing 22 verses. Is that right? That's a lot of verses. Huh? So we're doing 22 verses today. It's a record. It's in the Guinness Book of Records.
आज हम 22 श्लोकों का उच्चारण करेंगे, तो ये Guinness Book of World Record में आएगा.
So we're actually going to chant the Sanskrit on text number 22.
हम श्लोक संख्या
32. Excuse me, 32.
हम श्लोक संख्या 32 का उच्चारण करेंगे.
So first of all, I'm going to ask my dear translator friend to read all the verses from 26 to 49 in Hindi. You just go ahead and do that. And leave out 32, because we're going to do that together. Okay? All right, go ahead. I'll take some sleep. Go ahead.
हरे कृष्ण. तो हम श्लोक संख्या 26 से लेकर 49 तक का अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद हम 32 श्लोक सब साथ में करेंगे. तो भागवतम स्कंद संख्या 9 अध्याय 22 श्लोक संख्या 26. हे राजन, धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी ने 100 पुत्र तथा एक कन्या को जन्म दिया. सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था और कन्या का नाम दुशला था. श्लोक संख्या 27-28. एक मुनि के द्वारा शापित होने से पांडु का विषयी जीवन बाधित हो गया. अतएव उसकी पत्नी कुंती के गर्भ से 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन उत्पन्न हुए, जो क्रमशः धर्मराज, वायुदेव तथा इंद्रदेव के पुत्र थे. पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने नकुल तथा सहदेव को जन्म दिया, जो दोनों अश्विनी कुमारों द्वारा उत्पन्न थे. युधिष्ठिर इत्यादि पांचों भाइयों ने द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए. ये 5 पुत्र तुम्हारे चाचा थे. युधिष्ठिर ने प्रति विंध्य, भीम से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकीर्ति तथा नकुल से शतानीक नामक पुत्र हुए. हे राजा, सहदेव का पुत्र श्रुतकर्मा था. यही नहीं, युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों की अन्य पत्नियों से और भी पुत्र हुए. युधिष्ठिर ने पौरवी के गर्भ से देवक और भीमसेन ने अपनी पत्नी हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच तथा अपनी अन्य पत्नी काली के गर्भ से सर्वगत नाम पुत्रों को जन्म दिया. इसी प्रकार सहदेव को अपनी पत्नी विजया से सुहोत्र नाम का पुत्र प्राप्त हुआ. विजया पर्वतों के राजा की पुत्री थी. नकुल की पत्नी करेणुमी से निर्मित नामक पुत्र हुआ. इसी प्रकार अर्जुन का नागकन्या उलूपी नामक अपनी पत्नी से इरावन नामक पुत्र तथा मणिपुर की राजकुमारी के गर्भ से बभ्रुवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई. बभ्रुवाहन मणिपुर के राजा का दत्तक पुत्र बन गया. हे राजा परीक्षित, तुम्हारे पिता अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र रूप में सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए. वे सभी अतिरथों, जो 1000 रथवानों से युद्ध कर सकते के विजेता थे. उनके द्वारा विराट राज की पुत्री उत्तरा के गर्भ से तुम उत्पन्न हुए. जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में कुरुवंश का विनाश हो गया, तो तुम भी द्रोणाचार्य के पुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के द्वारा विनाश होने वाले थे, किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से तुम्हें मृत्यु से बचा लिया गया. हे राजा, तुम्हारे 4 पुत्र जन्मजय, श्रुतसेन, भीमसेन तथा उग्रसेन अत्यंत शक्तिशाली हैं. जन्मजय उनमें सबसे बड़ा है. तक्षक सर्प द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाने के कारण तुम्हारा पुत्र जन्मजय अत्यंत क्रुद्ध होगा और संसार के सारे सर्पों को मारने के लिए यज्ञ करेगा. सारे संसार को जीतने के बाद और कलश के पुत्र तुर को अपना पुरोहित बनाकर जन्मजय अश्वमेध यज्ञ करेगा, जिसके कारण वह तुरक मेधशाट कहलाएगा. जन्मजय का पुत्र शतानीक ऋषि याज्ञवल्क्य से तीनों वेद की कर्मकांड संपन्न करने की कला को सीखेगा। वह कृपाचार्य से सैन्य कला की भी सीखेगा तथा शौनक मुनि से दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा। शतानीक का पुत्र सहस्रनीक होगा और उसके पुत्र का नाम अश्वमेधज होगा। अश्वमेधज से असीम कृष्ण उत्पन्न होगा और उसका पुत्र नेमित चक्र होगा। जब हस्तिनापुर नगरी नई दिल्ली नदी की बाढ़ से जलमग्न हो जाएगी तो नमेचक्र कौशंबी नामक स्थान में निवास करेगा। उसका पुत्र चित्ररथ नाम से विख्यात होगा और चित्ररथ का पुत्र शुचिरथ होगा। शुचिरथ का पुत्र वृष्टमान होगा और उसका पुत्र सुषेण नाम का चक्रवर्ती सम्राट होगा। सुषेण का पुत्र सुनीत होगा, उसका पुत्र नृचक्षु होगा और नृचक्षु का पुत्र सुखीनल होगा। सुखीनल का पुत्र परिप्लव का सुनय और सुनय का पुत्र मेधावी होगा। मेधावी से निरपंजय से दूर्व तथा दूर्व से तिमी का जन्म होगा। तिमी का पुत्र बृहद्रथ का सुदास का शतानीक का दुर्दमन और दुर्दमन का पुत्र महीनर होगा। महीनर का पुत्र दंडपाणी होगा और उसका पुत्र निमी होगा, जिससे राजा क्षेमक की उत्पत्ति होगी। मैंने अभी तुमसे सोमवंश का वर्णन किया, जो ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का उद्गम है और देवताओं तथा ऋषियों मुनियों द्वारा पूजित है। इस कलयुग में क्षेमक अंतिम राजा होगा। अब मैं तुम्हें मागध वंश का भविष्य बतलाऊंगा, उसे सुनो। जरासंध पुत्र सहदेव के पुत्र का नाम मार्जारी होगा। मार्जारी से श्रुतश्रवा से युतायु, युतायु से निर्मित्र से सुनक्षत्र, सुनक्षत्र से बृहत्सेन, बृहत्सेन से कर्मजीत, कर्मजीत से सुतंजय, सुतंजय से विप्र से शुचि, शुचि से क्षेम से सुव्रत, सुव्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से सम से द्युमत्सेन से सुमति और सुमति से सुबल नामक का पुत्र उत्पन्न होगा। सुबल से सुनीत से सत्यजीत से विश्वजीत तथा एवं विश्वजीत से रिपुंजय उत्पन्न होगा। ये सभी पुरुष बृहद्र वंशी होंगे और ये विश्व पर 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे। इसका आखिरी श्लोक का एक तात्पर्य है, यह जरासंध से प्रारंभ होकर 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज करने वाला उपरिक्त राज्यों का इतिहास है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत अजमीर के वंशज नामक 22वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए।
Thank you. So we'll do the Sanskrit here for text 32.
32 श्लोक का उच्चारण करेंगे हम सब।
करेणु मत्यम नकुलो नरमित्रम तथार्जुना इरावंतम उलुप्यं वै सुतायां बब्रुवाहनम मणिपुरपते सोपि तत्पुत्रा पुत्रिका सुता।
करेणुमती नामक पत्नी से नकुलः नकुल से नर मित्र को तथा भी अर्जुन ने इरावान को उलुप्याम नाग कन्या उलुपुई के गर्भ से वही निसंदेह सुतायाम पुत्री से बब्रुवाहन मणिपुर के राजा की सह वह अपि यद्यपि तत्पुत्रः अर्जुन का पुत्र पुत्रिका सुतः अपने नाना का पुत्र अनुवाद एवं तात्पर्य स्वामी चरण श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। नकुल की पत्नी करेणुमति ने नरमित्र नामक पुत्र हुआ से नरमित्र नामक पुत्र हुआ। इसी प्रकार अर्जुन को नाग कन्या लूपी नामक अपनी पत्नी से इरावान नामक पुत्र तथा मणिपुर की राजकुमारी के गर्भ से बभ्रुवाहन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बभ्रुवाहन मणिपुर के राजा का दत्तक पुत्र बन गया। तात्पर्य यह समझ लेना चाहिए कि पार्वती मणिपुर नामक अत्यंत प्राचीन पहाड़ी देश के राजा की कन्या थी। अतएव 5000 वर्ष पूर्व जब पांडव शासन कर रहे थे तो मणिपुर का अस्तित्व था और इसका राजा भी होता था। अतएव मणिपुर राज्य अत्यंत प्राचीन राजतंत्र वैष्णव राज्य था। यदि इसे वैष्णव राज्य के रूप में फिर से संगठित किया जाए तो महान सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यह राज्य 5000 वर्षों से अपनी पहचान बनाए हुए है। यदि यहाँ वैष्णव वृत्ति का पुनर्जागरण हो जाए तो यह सारे विश्व में अद्भुत स्थान सिद्ध हो सकता है। वैष्णव समाज में मणिपुरी वैष्णव अत्यंत विख्यात हैं। वृंदावन एवं नवदीप में मणिपुर के राजा के बनवाए हुए अनेक मंदिर हैं। हमारे कुछ भक्त मणिपुर के हैं, अतएव कृष्ण भक्तों के सहयोग से मणिपुर राज्यों में कृष्ण भावना मृत आंदोलन का भली भांति प्रसार हो सकता है।
So, Manipur, I don't really know Sanskrit that well, but it sounds like it means the place of jewels.
Manipur jo hai, wo Sanskrit mein aisa pratit hota hai ki aisi jagah jahan pe bahut sare maniyan milti hain.
Mani means the jewel, pur means the place.
Mani ka matlab hai maniya, ratna, aur pur ka matlab hai wo jagah.
And of course, Bhakti Swarup Damodar Maharaj, he was from Manipur.
श्री प्रभुपाद के शिष्य परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज वो मणिपुर से थे।
And he had a very interesting life story. I don't remember the details. Are there any disciples of his here? Bhakti Swarup Damodar Maharaj. He didn't know his father and mother, I believe. He was from a village.
भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज श्री प्रभुपाद के शिष्य थे। उनका जो इतिहास था वो बहुत रोचक था। वो गांव से थे लेकिन अपने माता पिता को नहीं जानते थे।
And he was adopted by somebody when he was very young.
तो उनको किसी जब वो बहुत जवान थे तभी उनको किसी ने गोद लिया था।
And then he went to school and he was very academic, very intelligent.
वो उन्होंने विद्यालय में जाना प्रारंभ किया और वो बहुत मेधावी थे।
And then he went to university.
फिर उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाना प्रारंभ
किया। He went to university in America.
तो अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में गए।
He's a village boy from Manipur.
वो मणिपुर के गांव से थे।
And he got a PhD.
और उन्होंने पीएचडी प्राप्त की अमेरिका से।
And Srila Prabhupada very much liked him.
Srila Prabhupada उनको बहुत पसंद करते थे।
And encouraged him to try to defeat the materialistic scientists.
श्री प्रभुपाद उनको प्रेरित करते थे कि वो जो भौतिकवादी वैज्ञानिक हैं, उनको हराने का प्रयास करें।
Which Prabhupada said was our most important preaching work.
प्रभुपाद ने कहा ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रचार का कार्य है।
Because the scientists, they're controlling everything nowadays.
क्योंकि आजकल जो वैज्ञानिक हैं, वो सब कुछ समाज में नियंत्रित कर रहे हैं।
Of course, Krishna is the supreme controller.
हालांकि कृष्ण है वो परम नियंता है।
But because of the scientists, we have so many problems in the world.
लेकिन उन्हीं वैज्ञानिकों के कारण हम देखते हैं कि हमारे समाज में इतनी सारी समस्याएं अभी हो रही हैं।
Like in Delhi, we have so much traffic.
जैसे कि दिल्ली में हम देखते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक है।
So much pollution.
बहुत ज़्यादा प्रदूषण है।
And so this is all due to science, pretty much.
तो ये काफी हद तक साइंस का नतीजा है।
साइंस कम्स फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड।
तो ये विज्ञान जो है ये पाश्चात्य देशों से आता है।
रियल साइंस कम्स फ्रॉम द वेदस।
असली विज्ञान शास्त्रों वेद से आता है।
एज यू प्रोबब्ली नो बेटर देन मी दैट मैथमेटिक्स केम फ्रॉम इंडिया।
जैसे आप सब जानते होंगे कि जो गणित है वो भारत से आया है।
एंड when the materialistic countries like Great Britain and America and Western Europe,
तो जब ये भौतिकवादी जो देश थे जैसे कि ब्रिटेन और यूरोप,
they thought they could make life easier by inventing material solutions to the problems of the world.
तो जब इन भौतिकवादी देशों ने सोचा कि हम इन हमारे जीवन की समस्याओं के लिए हम कुछ भौतिक निवारण कर सकते हैं,
but we see that these modern conveniences have created more and more problems.
तो उन समस्याओं का निवारण करने की जगह इन सब चीजों ने और ज्यादा समस्याओं को बढ़ा दिया है.
And where will it end?
तो ये कहां समाप्त होगा?
So many countries now have atomic bombs.
इतने सारे देशों के पास परमाणु हथियार हैं.
Already the traffic in Delhi and Bangalore is famous for its traffic.
हालांकि अभी देखते हैं कि दिल्ली में और बेंगलुरु में कितना ज्यादा ट्रैफिक है और वो प्रसिद्ध है उसके लिए.
And everybody wants to get a motor car.
हर कोई चाहता है कि मेरे पास एक गाड़ी हो.
So they want to, I think they already have a car which is very cheap to produce. So everybody will be able to get a car.
तो अब जो गाड़ियां हैं वो बहुत सस्ते दामों में मिल जाती हैं, इसलिए हर कोई चाहता है कि मेरे पास भी गाड़ी हो.
So instead of being stuck in the traffic one hour,
तो इसकी जगह कि हम एक घंटा ट्रैफिक में फंसे रहें,
you can be stuck in the traffic for 3 hours.
आप ट्रैफिक के अंदर 3 घंटे तक बंधे रह सकते हैं.
So this is very exciting, isn't it?
तो ये बहुत रोचक है कि नहीं?
This is modern society.
तो ये आधुनिक समाज है.
This is not how humans are supposed to live.
लेकिन ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे मनुष्य को जीना चाहिए.
Srila Prabhupada wanted to cause a revolution in the world.
श्रीला प्रभुपाद चाहते थे कि हम इस समाज में एक क्रांति लेके आए.
And although we're using modern technology to spread Krishna consciousness,
हालांकि हम इस आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार के लिए.
We use computers.
हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं.
We use printing presses.
प्रेस का इस्तेमाल करते
हैं. We use cars and airplanes.
हम गाड़ियों का और हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं.
But the idea is that we are trying to defeat the materialistic modern culture.
लेकिन हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम जो आधुनिक जो समाज है उसको हम परास्त कर सकें.
So when you have a thorn in your foot,
जब हमारे पैरों में कोई कांटा चुभ जाए,
it's very uncomfortable.
तो वो बहुत तकलीफ देता है.
So you can take it out by using another thorn.
तो हम उस कांटे को निकाल सकते हैं एक और कांटे को इस्तेमाल करके.
So Srila Prabhupada's idea was to defeat the modern materialistic mechanistic society by using it to kill it.
श्रील प्रभुपाद ये चाहते थे कि हम इस भौतिकवादी कृत्रिम समाज के जो जो समाज का बनावट है उसे हम हटा सकें इस उसी को तकनीक को यूज करके.
Because there's nothing good about it. There is nothing good about it.
क्योंकि इस समाज के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है.
You could say, well, it's great that we have hospitals and emergency clinics if people have a car accident.
कोई कह सकता है कि नहीं हमारे पास तो इमरजेंसी वार्ड्स हैं जहां पे हम जा सकते हैं किसी का अगर एक्सीडेंट दुर्घटना हो जाए तो.
But the car accident is a problem because they invented the car.
लेकिन समस्या ही है कि उन्होंने गाड़ी का इजाद किया जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं.
You could say it's great that they learned how to cure cancer sometimes.
हम कह सकते हैं कि हमने बहुत बड़ा हमने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है.
But cancer is a modern disease.
लेकिन जो कैंसर है ये आज की बीमारी है.
It's a disease of the 20th and 21st century.
ये 20वीं और 21वीं सदी की बीमारी है कैंसर.
It's only recently that Indian women got breast cancer.
बहुत ही आधुनिक में हम देख रहे हैं कि ऐसा हमको देखने को मिलता है कि भारतीय स्त्रियों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है.
Because it's been proven that when women breastfeed their children,
क्योंकि ऐसा बताया गया है कि जब स्त्रियां अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं
less breast cancer.
तो फिर ये कैंसर का कम होता है.
So when India was, and it still is 50% maybe, I don't know the statistics, but when India was mainly a rural country and people lived off the land growing food,
जब भारत एक देश था जिसमें ज्यादा मुख्यतः जो आबादी थी गांव में रहती थी,
then people had a lot of children.
और जो लोगों के बहुत सारे बच्चे हुआ करते थे उस समय.
And the children, they helped on the farm.
बच्चे खेतों में खेती करने में सहायता करते थे.
And it was a very simple, natural way of life.
बहुत ही सादा जीवन था.
And people were happy.
और लोग खुश थे उससे.
But we find that the farmers are protesting now.
लेकिन अब हम देखते हैं कि जो किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं.
Because of the introduction of modern farming techniques.
क्योंकि आजकल का जो आधुनिक जो खेती करने के जो तरीके हैं उनका इजाद हो गया है.
Because all these big industrialized countries.
क्योंकि जितने बड़े-बड़े देश हैं जिनमें तकनीकरण हो चुका है.
They have convinced the farmers that they need to have chemical fertilizers and pesticides.
तो इन सब ने उनको किसानों को ये इस चीज के बारे में बता दिया है कि आपको अपने खेतों के लिए दवाइयां इंसेक्टिसाइड्स यूज करने पड़ेंगे और आपको ट्रैक्टर्स भी यूज करना पड़ेगा
because it's quicker.
क्योंकि उससे बहुत जल्दी काम हो जाता है.
The result is that the bulls are wandering around with nothing to do.
उसका नतीजा क्या है कि जो बैल हैं वो घूम रहे हैं इधर उधर बिना कुछ काम के.
They're simply eating the garbage in the street.
वो सड़क का कूड़ा खा रहे हैं.
It's very sad.
तो ये बहुत दुखदाई है.
This is not how society is supposed to be.
तो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे समाज को होना चाहिए.
At the end of Srila Prabhupada's life,
Srila Prabhupada के जीवन के अंत में,
at the end of his life,
उनके जीवन के अंत में,
Srila Prabhupada talked a lot about Varnashram.
Srila Prabhupada ने वर्णाश्रम के बारे में चर्चा की.
Varnashram is a system created by Lord Krishna himself.
वर्णाश्रम जो पद्धति है ये भगवान कृष्ण द्वारा ही बनाई गई है.
In the Bhagavad Gita, Krishna says, "Chaturvarnyam mayashristam gunakam vibhagashah."
भगवान गीता में बताते हैं इस वर्णाश्रम के बारे में.
So Krishna says, "I have created this four divisions of human society according to the three modes of material nature."
भगवान कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में कि इन वर्णाश्रम को मैंने बनाया है, इस समाज को मैंने विभाजित किया है चार भागों में गुण और कर्म के हिसाब से.
And this system created by Krishna is a perfect system by which everybody can make spiritual progress.
और ये जो वर्णाश्रम भगवान कृष्ण ने बनाया है ये एकदम उपयुक्त चीज है जिससे कि हर कोई सिद्धि को प्राप्त कर सकता है.
Even the dogs.
यहाँ तक कि जो कुकर हैं वो भी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं.
Because every creature can be utilized in Krishna's service when the head of the society is run by people who are Krishna conscious.
जब समाज के जो नेता हैं वो कृष्ण भावनामित होंगे तो समाज में हर एक जीव को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है.
So Srila Prabhupada, when somebody is dying, they talk about the most important things that they believe in.
जब कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में होता है तो वो उन चीजों की चर्चा करता है जो उनको सबसे ज्यादा मूल्यवान लगती हैं.
So Srila Prabhupada on his deathbed, he talked a lot about this Varnashram.
और Srila Prabhupada ने अंत समय में चर्चा की वर्णाश्रम के बारे में.
Because it's very important.
क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है.
That we have to show people a better way of life.
हमको लोगों को दिखाना होगा एक बेहतरीन तरीका जीने का.
Because it's great that we're distributing books.
ये अच्छा है कि हम पुस्तकें वितरण कर रहे हैं.
Because books are the basis of the Hare Krishna movement.
क्योंकि जो पुस्तकें हैं वो हमारे आंदोलन का नींव हैं.
And I go out myself and I distribute books. Like yesterday, I went to Connaught Place and distributed books.
और प्रभु जी बता रहे हैं कि प्रभु जी स्वयं भी जाते हैं पुस्तक वितरण करने. जैसे कल प्रभु जी कनॉट प्लेस गए पुस्तक.
And it was very nice.
और वो बहुत अच्छा रहा.
And I met some nice young people.
मैं कुछ नए लोगों, कुछ अच्छे लोगों से मिला.
So, I totally believe in book distribution.
तो मैं पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ पुस्तक वितरण में.
But the books talk about how Krishna was a cowherd boy.
लेकिन जो पुस्तकें हैं वो इस चीज के बारे में बताती हैं कैसे कृष्ण जो थे ग्वाल बाल थे और कृष्ण गायों को बहुत प्रेम करते हैं.
कृष्ण लिव्ड इन अ विलेज.
कृष्ण गांव में रहते थे.
एंड ही डिडंट लाइक टू लिव इन द्वारका.
वो द्वारका में रहना पसंद नहीं करते थे.
जस्ट इमेजिन हाउ ही वुड फील इफ ही हैड टू लिव इन न्यू दिल्ली.
आप कल्पना कीजिए अगर कृष्ण को रहना पड़ता नई दिल्ली के अंदर.
द्वारका वाज फुल ऑफ ब्यूटीफुल गार्डन्स and fountains and all the palaces had beautiful jewels and marble and lapis lazuli.
Dwarka bahut sundar tha, wahan pe bahut sare bagan the, wahan pe bahut sare jharne the, wahan pe mahal the jo marble se sangmarmar se bane hue the aur wo heeron se jade hue the wo sare ke sare.
And then we look at Delhi.
Aur fir hum dekhte hain Delhi ke upar bare mein.
There's chaos everywhere.
जहाँ पे सब जगह कुछ ना कुछ जमघट मचा हुआ है.
There's garbage everywhere.
हर जगह कूड़ा दिखने को मिलता है.
There's funny electrical wires everywhere.
हर जगह वह अटपटी सी बिजली की तारें दिखती हैं.
So I don't think Krishna would be happy in Delhi.
मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कृष्ण खुश होंगे आके.
Because Krishna's happy when he's worshipped with love.
कृष्ण प्रसन्न होते हैं जब उनको प्रेम के द्वारा उनकी पूजा होती है.
But he wants to see people happy.
लेकिन भगवान कृष्ण देखना चाहते हैं बाकी जीवों को खुश होता हुआ.
And I don't think people can be happy living in a polluted city like Delhi. It's very difficult unless you're very, very Krishna conscious.
और मैं नहीं मानता कि दिल्ली जैसी जगह में रह के कोई ऐसी जगह जो बहुत जगह प्रदूषण से भरी हुई है ऐसी जगह में रह के कोई पूरी तरीके से खुश रह सकता है जब तक कि वो बहुत ज्यादा कृष्ण भावना में इतना हो.
So many farmers are selling their farms.
बहुत सारे किसान अपने खेतों को बेच रहे हैं.
So they can be homeless in Delhi.
ताकि वो दिल्ली में आके रह सकें.
So Srila Prabhupada's idea was that we establish farm communities.
तो श्रील प्रभुपाद का ये चाहते थे कि हम ऐसी फार्म कम्युनिटीज बनाएं.
Which may not be easy to do.
जो हो सकता है कि इतना आसान ना हो करने के लिए.
But this is how human beings are supposed to live.
लेकिन ये एक ही तरीका है जिससे कि मनुष्य को जीना चाहिए.
This is how the whole world lived 100 years ago.
इसी तरीके से कम 100 साल पहले पूरा विश्व इसी तरीके से रहता था.
Even in America and Europe, most people lived on a farm.
यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप में भी मुख्यतः सभी लोग इन्हीं फार्म्स पे रहते थे.
And they had cows.
उनके पास गायें होती थी.
And they had oxen.
उनके पास बैल होते थे.
And life was a lot simpler and more peaceful.
और जीवन बहुत ही सादा और बहुत ज्यादा शांत होता था.
So we know the verse Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Haitacha Jagatai Krishna Govinda Namo Namaha. You all know that verse.
तो हम सब इस श्लोक के बारे में जानते हैं.
So Krishna is very kind to the cows and the Brahmins.
भगवान कृष्ण गायों के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति बहुत ज्यादा कृपालु होते हैं.
So the basis of Brahminical culture is cow protection.
और ब्राह्मणिकल जो जीवन है उसका जो मूल है वो है गायों की गांवों की रक्षा.
I was in Vrindavan near Govardhan a couple of days ago.
प्रभु जी बता रहे हैं कुछ दिनों पहले प्रभु जी वृंदावन गोवर्धन में थे.
And I saw one goshal there. A goshal is where you protect cows.
तो प्रभु जी ने एक गौशाला देखी जहाँ पे गायों की रक्षा होती है.
But there were so many cows in such a small area, they had no room to move.
लेकिन उस गौशाला में बहुत सारी गायें थी बहुत थोड़े से जगह में कि उनके पास जगह नहीं थी हिलने के लिए भी.
This is not cow protection.
ये गायों की रक्षा नहीं कहलाएगा.
So as members of ISKCON,
तो ISKCON के सदस्य होने के नाते,
it is our duty to understand what Srila Prabhupada wanted.
तो ISKCON के सदस्य होने के नाते हम सबको जानना जरूरी है कि श्री प्रभुपाद हमसे क्या चाहते थे.
And it may be very difficult to do everything Srila Prabhupada wanted.
हालांकि ये मुश्किल हो सकता है कि जो प्रभुपाद हमसे चाहते थे उसको सही में करना.
But it doesn't mean it's not important.
मुश्किल है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जरूरी नहीं है.
And it doesn't mean we shouldn't think about it.
और इसका मतलब नहीं कि हम इसके बारे में सोचे ना.
We should know what Prabhupada wanted.
हमें पता होना चाहिए कि प्रभुपाद क्या चाहते थे हमसे.
And we should preach to people about what Prabhupada wanted.
और हमको इसी का प्रचार करना चाहिए कि प्रभुपाद क्या चाहते थे हम सबसे.
This is our duty as followers of Srila Prabhupada.
ये श्रील प्रभुपाद के फॉलोअर्स होते हुए हम सबका कर्तव्य है ये.
It's easy enough to offer flowers to Prabhupada and bow down.
प्रभुपाद को पुष्प अर्पित करना, उनको प्रणाम करना बहुत आसान है.
But we have to try to put into place the things that Prabhupada wanted.
लेकिन साथ में हमको जो प्रभुपाद चाहते थे उनको भी करने का प्रयास करना चाहिए.
So he said that only 50% of his work was done when he left this planet.
चला प्रभुपाद ने जब अपना शरीर छोड़ा इस धराधाम से तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरा खाली 50% कार्य अभी पूरा हुआ है.
He said I've given you the basics.
प्रभुपाद ने कहा मैंने आपको सारा मूल चीजें बता दी हैं.
You have the books.
आपके पास पुस्तकें हैं.
But my big regret is that I have not established Varnashram.
प्रभुपाद ने कहा मुझे एक चीज का खेद है कि मैं अभी वर्णाश्रम का स्थापना नहीं कर पाया हूँ.
Which is organizing society in such a way that everybody is protected.
वर्णाश्रम है कि हम समाज को ऐसे विभाजन करें, उसको ऐसे ठीक से निरीक्षण करें ताकि हर कोई सुरक्षित हो सके.
So this is what we have to think about.
तो इसके बारे में हमें विचार करना होगा.
And of course, India is a special place.
भारत एक बहुत विशेष जगह है.
As Srila Prabhupada said, Indian people are not meant for materialistic life.
श्रीला प्रभुपाद कहते थे कि भारतीय लोग भौतिकवादी जीवन के लिए बने ही नहीं हैं.
They're not good at being, well, they're good at making money maybe, but they're not good at living the modern lifestyle in a healthy, clean way.
तो भारतीय लोग हैं वो भौतिकवादी जीवन के लिए बने ही नहीं हैं. वो हो सकता है धन कमा लें लेकिन इस भौतिकवादी जीवन में बहुत खुशी से और बहुत ज़्यादा स्वस्थ रूप से रह पाएं वो संभव नहीं है भारतीयों के लिए.
But they need to, we need to become Brahmins.
हम सबको ब्राह्मण बनना होगा.
Or we need to try to act in a natural varna.
हमको कम से कम अपने जो असली जो वर्ण है उसमें कार्य करने का प्रयास करना चाहिए.
Nobody is better than somebody else. If you're a Sudra, you're not lesser than a Brahmin.
कोई भी किसी से ज्यादा बेहतर नहीं है. अगर कोई शूद्र है तो ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण उससे ज्यादा श्रेष्ठ है.
Because all parts of society are very important.
क्योंकि हमारे जो समाज के हर एक वर्ग है उसका अपना महत्व है.
So the Brahminical culture was lost when the Brahmins became degraded.
तो ये ब्राह्मण जो कल्चर था ये खत्म हुआ जब जो ब्राह्मण थे उनका पतन होना शुरू हुआ.
And what was Daivi Varnashram, the divine arrangement of society into a coordinated effort to please God.
तो दैवी वर्णाश्रम समाज का ऐसा संयोजन है जिससे कि हम सब मिलके भगवान को प्रसन्न कर सकें.
Became the caste system.
लेकिन इसका परिवर्तन जब ब्राह्मण का पतन हुआ कास्ट जातिवाद में बन गया.
Because the Brahmins became degraded.
क्योंकि ब्राह्मण जो थे वो पतन हो गया उनका.
And just because they were a Brahmin thread or they were born in a Brahmin family, they considered themselves superior to everybody else.
क्योंकि उनका जन्म ब्राह्मण खानदान में हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक जनेऊ पहना था, तो वो अपने आप को बाकी वर्गों से बड़ा मानने लगे.
So Western people often look at India and they say, "Oh, look at them! They have the caste system where they're untouchables and." People are excluded from society.
जब पाश्चात्य लोग भारत की तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं कि भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे जातिवाद होता है, जहाँ पे छुआछूत का प्रथा होती है.
But when there are real Brahmins, and a real Brahmin is not easy to be. I can't say I'm a real Brahmin.
जब लेकिन समाज में असली ब्राह्मण उपलब्ध होंगे जो पाना आसान नहीं है.
But for instance, in the sixth canto, it gives you the story of Prithu Dhruva Maharaj.
तो जैसे श्रीमद् भागवतम में कथा आती है ध्रुव महाराज के विषय में.
So Dhruva Maharaj, he was Shaktivesh avatar.
ध्रुव महाराज थे वो भगवान के शत्यावेश थे.
And he addressed the general public.
उन्होंने समाज को.
He gave instructions to the general public.
प्रजा को उन्होंने आदेश दिया.
And one of the things he said was that I beg the blessings of the Brahmins and the cows.
तो उन्होंने अपने प्रजा को आदेश देते हुए बताया कि मैं ब्राह्मणों का और गायों का आशीर्वाद चाहता हूँ.
What did you say? He's saying something. Anyway, so Preacher Maharaj, he begged the blessings of the Brahmins, and he said, I beg the blessings, he who carries the dust of the feet of the Brahmins on their head, and their only wealth. I'm going to ask you a question. What is the wealth of the Brahmins? And I'll be very surprised if you get it. You might. But so far, I've never found anyone who knew the answer. The wealth of the Brahmins is... Okay. Most people say austerity is the wealth of the Brahmins. But here he said, the wealth of the Brahmins is good behavior. That a Brahmin knows how to behave properly. So we have to become Brahmins, or at least we have to develop the qualities of a human being. Krishna himself says, Etavan jammasapalyam e dehishu ehidehinam prane ata diavacha shreyanam acharanam sada. Anyone know that verse? Very important verse. Everyone should learn this verse. Krishna says, it is the duty of all human beings to work for the benefit of others, using their wealth, their words, their body, and their life. Everything should be used to work for the benefit of others.
तो पृथ्वी महाराज ने जब उपदेश दिया तो उन्होंने बताया कि ब्राह्मणों का जो धन है, असली धन है, वो है अच्छा व्यवहार. और प्रभु जी बता रहे हैं भागवतम से एक श्लोक कोट करके, से बताया कि हर जीव को बाकी सब अपना सब लोगों के हित के लिए कार्य करना चाहिए. अपना धन लगाकर, अपने शक्ति को लगाकर, सब कुछ लगाकर सब लोगों के हित के लिए कार्य करना चाहिए.
So a Brahmin has certain qualities. The first one is forgiveness.
ब्राह्मण की सात गुण होते हैं जिनमें से पहला है क्षमा.
So if we have any enemies, we're not a Brahmin.
अगर हमारा कोई भी शत्रु है इसका मतलब हम ब्राह्मण नहीं हैं.
In fact, there's a hellish planet. If you don't offer your enemy a place to sit and some a cup of water and some kind words.
अगर आप अपना शत्रु आपके आते हैं और आप उनको बैठने की जगह नहीं देते, पानी नहीं देते और कुछ अच्छे शब्द नहीं बोलते, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक नरक बनाया हुआ है.
So this is a civilized human being, that they accept their karma, but they don't hate anybody.
तो सभ्य मनुष्य होते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि हमारे कर्मों की वजह से हमें जो मिल रहा है, लेकिन वो किसी और को द्वेष नहीं करते.
So we're all very, 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 very fortunate to be devotees.
हम सब बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि हम सब भक्त बन पाए.
But as devotees, we have a responsibility.
लेकिन भक्त बनकर हमारे सब की बहुत सारी कर्तव्य हैं.
And that is to show an ideal example to society.
हमारा कर्तव्य है कि समाज को एक असली उदाहरण देके दिखाएं.
So it starts by knowing what are the qualities of a devotee.
तो ये शुरुआत होगी जब हम ये दिखाएंगे कि भक्त के क्या क्या चरित्र, क्या क्या गुण होते हैं.
A devotee has 26 qualities.
एक भक्त के 26 गुण बताए गए हैं.
So we should learn these qualities and we should see which ones we're missing.
हमको ये सब गुणों को याद करना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कौन से गुण अभी पूरी तरीके से अर्जित नहीं कर पाए.
And we should develop all the qualities to become ideal people.
और ये सारे के सारे गुण हमको जागृत करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम
एक सभ्य व्यक्ति. Because the world is in a very difficult situation right now.
ये पूरी जो विश्व है बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में है इस समय.
And the only solution is Krishna consciousness.
और एकमात्र जो उपाय है वो है कृष्ण भावनामृत.
So we have to work very hard to improve ourselves and also to try to help others.
तो हमको बहुत मेहनत करनी होगी अपने ऊपर अपने आप को सुधारने के लिए और बाकी सबको सहायता करने के लिए.
And maybe in 100 years from now we'll have beautiful farm communities and there won't be any more motor cars and we'll be able to use oxen to plow the land and get back to the kind of lifestyle that Krishna wanted.
So ho sakta hai 100 saal mein hum aisa dekhein ki hum bahut sari hamare paas farm communities ho, koi bhi gaadiyan na ho, sab bailon ka istemal kar rahe ho kheti karne ke liye aur Krishna ko prasann karne ke liye sab aisa karya kare.
So thank you very much. Anyone have any questions or comments?
Iske koi prashn ya tippani?
Hare Krishna Puji. Thank you Prachi for nice lecture. Just want to ask about this Varnashram. We hear this is related to body and it is considered material, and we devotees are somehow above these material things, and also Chaitanya Mahaprabhu has said na ham vipro na cha narpati na api vaishnava shudro. So these all so sometimes we get confused how importance this varnashram for us. Kindly explain.
Prabhuji ka prashn hai ki jo varnashram hai ye hamare sharir se sambandhit hai aur ye dekha jaye to bhautik hai. तो और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि मैं ना तो ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य, ना शूद्र, ना ब्रह्मचारी, ना गृहस्थ, ना वानप्रस्थ, ना संन्यास. तो भक्तों में क्या जरूरी है वानप्रस्थ को वर्णाश्रम को पालन करना, कितना जरूरी है इसको?
There's no need to get confused because Srila Prabhupada, you know, He definitely wanted us to protect cows. He wanted us to become Brahmins. He wanted us to engage everybody in devotional service. But not everybody can immediately become transcendental. So the conversation between Ramananda Roy and Lord Chaitanya, that's between two very elevated personalities. And they were discussing what is the highest achievement, which is to achieve love of God, okay? Which surpasses Varnashram, obviously. But because most of us are conditioned souls, therefore we need Varnashram to feel safe in the material world. Bhaktivinoda Thakur, he used the example of somebody who's a tightrope walker, and they have a safety net. You know, if they fall off the tightrope, they're caught by the net. Okay, so Varnashram is like that, that we're engaged in an activity that is natural for us, whether it's being a farmer or being a cook or speaking or writing, whatever it is, okay? Doesn't matter. But people need to be engaged according to their natural qualities. And if there's no engagement for them, they can't just sit around and read, you know, Rupa Goswami's books and Chaitanya Charitamrita and chant Hare Krishna all day. That's not going to happen. So they'll go crazy. So they have to be engaged according to their propensities, okay? On top of that, we need to show people an ideal example of how humans are supposed to live, because this is a preaching movement. We have to show people how society should be organized. So, you know, ISKCON is for the most intelligent people. The higher Krishna consciousness is the topmost yoga system. Krishna says, you know, Bahanam Jamante, Gyanam Bhamam Patiti. So after many, many births and deaths, one who's intelligent takes to worships Krishna. But most people need, you know, they need to be engaged according to their propensity because they're not big philosophers. Most people are very simple. They don't think about life. They do what everybody else is. You know, if everybody, whatever it is, you know. But everybody does what everybody else does. So Krishna consciousness has to show people, by example, how to live properly in the material world. And so when that is properly organized, that is Varnashram. And it's Daivi Varnashram, because Daivi Varnashram means it's divine. It's not just material. It's a spiritual thing whereby the Brahmins are guiding people and the people are happy to be guided because they love the leaders, because, you know, the leaders really care about them and really have good qualities. And then you have the Sudras who are happy to serve because they feel inspired, because they're taken care of nicely. So, you know, this is why it's so important. That thing about Varnashram not being important, that is totally untrue. It's very essential if we hope to, you know, change the world. We're not all supposed to live in a city. What is the idea that everybody becomes a devotee and everyone lives in a city and, you know, has to work in some job they hate doing and commute to work for 2 hours in the traffic every day? I don't think that's what human life is all about. Of course, we're conditioned to living in a city. It's not easy to live on a farm. But at the same time, you know, most people in India live on a farm already, but they're being misled while they're watching their cricket that, you know, maybe city life is better. This is too much hard work. It's because of the way Western big business has convinced them to use modern farming techniques, because we all know how many farmers in India have committed suicide. 300,000 farmers have committed suicide. That's just such a terrible calamity, and it's just so sad. It's amazing. But it's due to Western technology. Anyway, Hare Krishna. Do you agree with me? Do you agree? Okay, thank you. Anyone else? Any ladies?
In Saransh, I told you that we should not be confused with Varnashram. Prabhupada wanted to follow Varnashram. We should protect the villages and make the villages. तो और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हर कोई इतना दिव्य रूप से नहीं हो सकता. जो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय का संवाद है, वो बताया गया कि आध्यात्मिक स्तर में सबसे उच्चतर क्या स्थिति हो सकती है, बट हम में से हर कोई उस उच्च स्तर स्थिति पे नहीं है. इसलिए हम हर किसी को अपने वर्ण के हिसाब से कार्य लगना चाहिए, सेवा में होना पड़ेगा. और दूसरी चीज़ कि हमको प्रचार, ये प्रचार का आंदोलन है, तो हर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सिद्धांत को नहीं समझ सकता. ज़्यादातर लोग बहुत सिंपल होते हैं, बहुत सादे होते हैं, तो उनको उनके उनके नेचर के हिसाब से, उनको स्वभाव के हिसाब से कार्यगत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको दिखाना पड़ेगा समाज को कि एक आइडियल कैसे समाज हो सकता है. तो उसके लिए भी वर्णाश्रम को पालन करना ज़रूरी है.
Alright, thank you very much. Hare Krishna. Shri Prabhupada ki jai.
इसके साथ ही करता प्रभु की.